جی بسم اللہ کریں.
جی سر یہ سوال باتیں نہیں مراد سننے پہ ہے. 351
آپ اپنا پہلا سوال دوہرا دیں.
اوکے سر ٹھیک ہے. سر یہ سعادت مند وہ ہے جو اپنی نفس کی نگرانی کرتا ہے. سر یہ ایک تو سعادت کو سمجھنا تھا اور دوسرا یہ جو اپنی نفس کی نگرانی کرتا ہے.
جی سعادت مندی کہتے ہیں کسی بات کو تسلیم کرنا. سعادت سے لفظ ہے سعید یعنی سعد سین عین دال. سعد کا مطلب ہوتا ہے مبارک یعنی اچھا. سعادت مندی ہوئی جو اچھے بچے ہوتے ہیں. تو سعادت مندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نگرانی کریں. اب نگرانی سے کیا مراد ہے؟ نگرانی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو حرکت میں دیکھیں, اس کو اگتے بڑھتے دیکھیں, اس کو صرف دیکھیں. جہاں وہ غلط کرنے لگے اسے روک دیں. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ کھیل رہا ہے کود رہا ہے اپنا خوش ہے. آپ اسے دیکھ رہے ہیں, نگرانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. لیکن جہاں وہ غلط کرنے لگے یا گرنے لگے تو آپ جلدی سے لپک کر اس کی مدد کر دیتے ہیں یا اس کو روک دیتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ذہن کی نگرانی کرتے ہیں. ذہن کی نگرانی سے مراد ہے اپنی سوچوں کا دھیان رکھتے ہیں. یعنی ہمیں ایسی سوچیں تو نہیں آ رہی جو نقصان دہ ہیں میرے لیے یا دوسروں کے لیے. اگر کوئی ایسی سوچ ابھرے جو ہمارے لیے یا کسی کے لیے بری ہے اس کو روکنا ہے, اس کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نگرانی کا مطلب ہے دیکھنا, لفظی مطلب ہے نگران دیکھنا یعنی دیکھتے رہنا. بچے کی نگرانی آپ کرتے ہیں, بچے کی نگرانی کیسے کرتے ہیں؟ بس دیکھتے رہتے ہیں. جہاں وہ گرنے لگتا ہے دوڑ کے اس کو اٹھا لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں. کوئی غلط کرنے لگتا ہے گرنے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لپک کے سنبھال لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ذہن میں آنے والے جو بھی خیالات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں یا ان کو دھیان میں رکھتے ہیں. اگر کوئی خیال غلط ہو نامناسب ہو ایسا ہو جس سے مجھے یا کسی اور کو تکلیف پہنچ سکتی ہو تو نگرانی کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خیال غلط ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی اب فرمائیے.
جی سر یہ دوسرا سوال ہے, فرمایا یہ دنیا ایسی ہے کی جگہ جہاں کوئی تعلق نہیں, مطلب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونے کی سبب ہے. ایک آدمی کو 10 آدمی نوچ رہے ہیں. اس نوچنے کو آپ تعلق کہہ لیں, رشتہ کہہ لیں. کبھی کوئی آدمی اپنے بیٹے یا باپ کی قبر سے راگ نہیں لگا. سر اس کو یہ جو نوچنا ہوا
مطلب یہ ہے کہ یہاں سارے رشتے ضرورت کے ہیں. بچہ ماں کو نوچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اسے کھینچتا ہے. اب اس کا دودھ پی رہا ہے, اس کا خون پی رہا ہے اور وہ ساری زندگی فرمائشیں کرتا ہے, یہ بھی دے دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو. یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے, سارے ضرورت کے رشتے ہیں. سب ایک جیسے, ایک بندہ کما رہا ہے ایک گھر میں, ایک بندہ کماتا ہے اور 10 بندے کھانے والے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے کو نوچ ہی رہے ہیں نا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے فیس دینی ہے, کوئی کہتا ہے میرے کپڑے نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے روٹی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے آئس کریم کھانی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے شہر کو جانا ہے, हाँ या नहीं? तो ये रिश्ते कहे के हुए हैं, जरूरतों के रिश्ते हैं। वो एक बंदा जो है वो काबू आ गया, उसकी अपनी कोई जरूरत है जिसकी वजह से वो बंधा हुआ है, बाकी जो है अपनी जरूरत के तहत उसे जुड़े हुए हैं। और वो जहाँ कहीं बाप मना कर दे कि नहीं मैं नहीं देता, क्या होता है? बच्चे घर से भाग जाते हैं। और करे काहे का रिश्ता है? जरा सा आप तवज्जो देना, क्या कर रहे हैं? ये सारे रिश्तों पे गौर करें, ये हकीकत शनासी सिखा रहे हैं मुर्शिदे करीम। क्या आप जरा गौर तो करें, सारे रिश्ते, अम्मा जो है वो बिलावजह नुच रही है, इशार करे जा रही है, बाप क्या कर रहा है, इशार कर रहा है, असल में क्या है उनके दिल में लालच है किस चीज का, कि ये मेरा सहारा बनेंगे, वो इसलिए नुच रहे हैं। इस गलत सोचने की वजह से दोनों तरफ कबाड़ा हो गया। उन्होंने तवक्कुआत कायम करके वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, जिद किए जा रहे हैं, वो जिद करवाए जा रहे हैं। बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करना माँ बाप ने अपने ऊपर फर्ज किया हुआ है। नहीं, आप जिद मत पूरी करें, बच्चे की तरबियत करें, बच्चे को समझाएं कि तुम्हें फरमाइश का पूरा हक है, लेकिन अपने आप को ग्रो करो, अपना जहन डेवलप करो, अच्छी तरह सोचना, अच्छी तरह रहना सीखो, अपनी सलाहियतों को उभारो। हम लोगों ने आश्रय बनाए हुए, नतीजा ये कि बच्चे हमारे बात को समझ जाते हैं कि भाई ये तो हम इनका आसरा बनेंगे, ओ इनको तो हमारी जरूरत है, वो नोचने खसोटने के ऊपर आते। बात हो गई बात?
यस सर, यहाँ पर भी बैलेंस ध्यान दिया जा रहा है।
भाई जब आप अल्लाह से आश्रय पे चलना सीख गए, तो आपने बच्चों की तरबियत करनी है कि अल्लाह ने मुझे इनको मेरे हवाले किया, अल्लाह ने इनको मेरे यहाँ पैदा किया तो क्यों किया, ताकि मैं इनकी तरबियत करूं। आप उनसे ब्लैकमेल ना हो, आप उनकी फरमाइशें पूरी करें, जरूर पूरी करें, लेकिन जिद मत करने दें। उन्हें कहें कि फिर जिद की गुंजाइश नहीं है अल्लाह के निजाम में, तुम्हें अल्लाह के कहने पे चलना है, इसी तरह तुम्हें अम्मा अब्बा के कहने पे भी चलना है, क्योंकि अम्मा अब्बा जो है वो तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते ना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनके दिल में प्यार डाला है, औलाद के लिए प्यार अल्लाह ने डाला है ना, वो इसी प्यार के हाथों नुच रहे हैं। नहीं, आप नोचने ना दें, प्यार करें और उनको कायल करें कि वो भी आपसे प्यार करें। लेकिन ना प्यार करना एक हुनर है, ठीक है, लेकिन प्यार करवाना उससे बड़ा हुनर है। अब हमारे यहाँ पेरेंट्स औलाद को प्यार कर रहे हैं, औलाद से प्यार करवाना नहीं आता उन्हें, वो उनकी नाजायज जायज जरूरतें ख्वाहिशें जिद्दें पूरी करके उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है वो बुरा मनाते हैं और माँ के दिल पे ऐसे जैसे किसी ने उसे पत्थर से पीट दिया। नहीं भाई, ये क्या बात हुई, बच्चे को आप वहाँ रोक दें कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। यही तो बताया कि एक बंदा जो है उसको 10 बंदे नोच रहे हैं, ठीक हो गया ना। ये यहाँ पे जब आप ये समझ आ गए कि सब जरूरत के रिश्ते हैं, आपको ये बात जहन नशीन हो जानी चाहिए। देखे ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मिसाल ले लें, देखे आपका और मेरा क्या रिश्ता है, ये भी जरूरत है। आप مجھ سے کچھ علم سیکھنا چاہتے ہیں, میں سکھانا چاہتا ہوں. میری ضرورت یہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو سیکھنے پہ راضی ہو, ہاں یا نہیں؟ اسی طرح آپ کو اگر طلب ہے علم کی تو مجھے طلب ہے کسی طالب علم کی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ساری ضرورتوں کا کھیل ہے. نہیں, سیلفش ہونا, دیکھے نا, جب آپ بچے کو یہ پورا شعور نہیں دے رہے تو وہ تو سیلفش ہے. ہر بچہ کتنا سیلفش ہوتا ہے, اب غور کریں. بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مجھے دودھ پلاؤ, نہیں ملتا تو تھڑ مچا دیتا ہے. کپڑے آپ اسے اپنے شوق سے پہناتے ہیں, وہ پہن لیتا ہے. دیکھیں نا, سیلفشنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا نہ کریں اور اپنے حق کے لیے خوب ڈٹے رہیں. جی, ویلکم. I'm grateful. جی, آپ کو اچھا لگا, بہت شکریہ.
بہت اچھا لگا. نہیں سر, ہم لوگ سے سب کے آگے بچے ہیں, ایون اب تو بچے بھی ہیں, لیکن یہ بہت خوبصورت آپ
نے. نہیں, یہ حضور مرشد کریم نے دیکھے نا کتنی بڑی بات کی طرف متوجہ کیا ہے. ہمارا ویژن بڑا ہو گیا, اب ہمیں احساس ہے کہ یہ سب ضرورتوں کے رشتے ہیں. مجھے پتا ہے میں ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے قابل بنایا, لہذا مجھے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. لیکن ضرورت پوری کرنا اور بلیک میل ہونا, اس میں فرق ہے.
اور آپ نے صحیح کہا کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ روتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے.
جی, ہم نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ ہم سے پیار کریں اور ہم ان کی دیکھ بھال کریں. اگر گھروں میں یہ رویہ آ جائے تو مجھے بتائیے کہ کتنا خوشگوار ماحول ہو جائے گا.
آپ نے کہا پیار کرنا نہیں,
میں نے عرض کیا نا کہ پیار کرنا ایک ہنر ہے, اور پیار کروانا اس سے بھی بڑا ہنر ہے. پیار تو سارے ہی کرتے ہیں, ساروں کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں, لیکن خود گلو گلزار بننا, پھول کی طرح بلوم کرنا تاکہ لوگ ان کو پیار کریں, یہ کسی کا دھیان نہیں ہے. ارشاد, جی
سر, سوال یہ ہم نے اپنی امانت سماوات عرض اور جبال کو پیش کی, سماوات عرض اور جبال نے اس امانت کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس بار کے متحمل نہیں ہو سکتے, مگر انسان نے اس کو بے سوچے سمجھے قبول کر لیا. بس ایسے یہ تعلیم اور ظاہر ہے سورہ اعزاب کی 72 آئے ہے سر. سر سوال اس کے لیے آ رہے ہیں کہ سماوات شعور کے درجے بتائے گئے اور سکرین جو کہ ہم خود ہیں اور دیوار کی ذلت ہے, تو یہ سب تو انسان نے اللہ کی طرف سے ان دے کہہ کر
جی ہاں
اسے سمجھے کمپلیٹ کر لیا کہ کیا مراد ہے؟
واہ جی واہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب کریم نے کہا ثم اردنا الامانتا, ہم نے ان سے کہا, فرمائش کی شعور کے سارے درجوں سے, جبلت سے اور آپ کی سکرین سے, کہ امن امن امانتا, امن میں رہنا ہے. ف فابینا اور یہ پہلو صحیح کی کیا کیا پہلو صحیح کی اکڑے اور کہا نہیں جی ہم تو نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہو گیا لیکن انسان لفظ انسان قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہاں اس سے مراد ہے بھولا ہوا نسیان سے ہے یہ نسی خلقہ میں نہیں کہہ رہا قرآن نے کہا ہے نسی خلقہ وہو خصیم مبین سورہ یاسین میں یعنی اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے کیونکہ یہ بھولا ہوا ہے اور اس نے جو اللہ نے اس کو علوم دیے تھے ان کو یہ بھولا ہوا ہے اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ماننے اس کو امانت کا بوجھ اٹھانے کا تیار ہو گیا اب اس نے ظلومن جہولا یعنی یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانے والا ظالم ظلم ہے کسی چیز کو جگہ سے ہٹا دینا اب دیکھیں نا ایڈریس کیا جا رہا ہے شعور سے یعنی سماوات سے ارض سے اور دیوال سے ٹھیک ہو گیا لیکن انسان تو مخاطب ہی نہیں ہے اب اللہ میاں اس سے مخاطب ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہا کہ میں کرتا ہوں تو ایک تو یہ ظلم کیا اس نے بے موقع بے سکا بولا جب تو یہ ایڈریس بھی نہیں تھا تو یہ کیوں بولا اب اس کی مثال سنیں میں آپ سے ایک فرمائش کروں ایک کام کا کہوں آپ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتی لیکن آپ کے سر پہ بیٹھی ایک جو کہے کہ یہ میں کروں گی آؤٹ آف پلیس بولا نا دیکھیں نا زمینی شعور کو لے لیجئے زمین پوری سکرین کو لے لیجئے میں اس کا جز ہوں اب پوری سکرین کہہ رہی ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک چھوٹا سا جز دیکھیں نا زمین کے مقابلے میں انسان کی کیا اوقات ہے کیا جز ہے کیا حیثیت ہے کیونکہ جتنا تو ہے یہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تمہیں اپنا سب کچھ تو بھولا ہوا ہے تم جاہل علم نہیں رکھتے اور کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا تو یہ بات واضح ہو گئی جی ایک تو آؤٹ آف پلیس بولا دوسرے وہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھنا آپ ایک بات کہیں مجھے سمجھ ہی نہ ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے تو میں کیا ہوا جاہل نہ ہوا اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ لفظ انسان آیا ہے آدم نہیں آیا آدم کو اللہ نے نفخ کو فیہ من الروحی بھی کہا اور علم الآدم اسماء کلہا بھی کہا ہم آدم کا ورثہ چھوڑ کے بھولے ہوئے بیٹھے کہ ہمارا بینک میں کتنا پڑا ہے پیسہ کتنی دولت کے ہم مالک ہیں اللہ کے وہ علوم جو اللہ نے آدم کو عطا کیے تھے وہ ہمارا ورثہ ہیں ہم انہیں کو بھولے ہوئے ہیں تو جب ہم انہیں کو بھولے ہوئے تو ہم کیا ہوئے بھائی جاہل ہی تو ہوئے واضح ہو گئی بات
جی سر بہت اعلیٰ تھینک یو سر تھینک یو سو مچ تھینک یو سر میرا سوال ہو
گیا جی اور کوئی
السلام علیکم سر
جی وعلیکم السلام
سر میرا پہلا سوال جو ہے یہ رویا سے साथ से साथ हकीकत ही होते हैं, रोया सासा और रोया एक कासबा। तो सर इन दोनों में अब जैसे मैं ये समझना चाह रही थी कि हम अपने ख्वाब को समझ नहीं पाते हैं, हमें नहीं पता होता उसका क्या मतलब है, उसको कैसे समझे सर? क्योंकि ऐसा लगता है वो आपकी अपनी एक तरह है, कुछ सोचे अगर आपके जहन में चल रही होती है उससे रिलेटेड कोई ऐसा आ गया तो उसमें मुआवजा करना। क्योंकि सर वही वाली बात जैसे कि आपने इसको सोना के लिए टाइम में अभी बताया कि थॉट आपने कहा था कि निगरानी करने में, सर तो उस लिहाज से अगर देखे तो फिर हम किस तरह से इसको समझे, किस तरह?
मैं कोशिश कर देता हूँ जी, देखें जी आप कोशिश कर देता हूँ। देखें बात यह है कि चाहे आप ख्वाब में हैं या बेदारी में, हम इत्तलात के जेरे असर चलते फिरते और काम करते हैं। जब ये बात आपको क्लियर हो गई कि सारा खेल इत्तलात का है, जब हम सो रहे होते हैं तो जो इत्तलात हमारा जहन वसूल कर लेता है, जिन इत्तलात को हमारा जहन हमारे शऊर की सतह तक ले आता है वो हमें याद रह जाते हैं।
ऐसे ही है।
अब चूंकि जहन की साख्त ऐसी है कि वो हकीकत यानी इत्तलात को एज इट इज देखता है या उसको अपनी मर्जी की तस्वीरी सूरत दे देता है, जब वो एज इट इज देखता है तो उसको रोयाए सादका कहते हैं, यानी एज इट इज। और जब वो डिस्टॉर्ट हो जाता है जहन, क्योंकि ख्वाब को ख्वाब में मिलने वाली तलाक को डिस्टॉर्ट कर देता है तो उसे खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो फिर वो ताबीरें पूछता है। ठीक हो गया ना? तो अब ऐसे ख्वाब जिनका जो ऐसे ख्वाब जिनकी इत्तला को शऊर ने डिस्टॉर्ट कर दिया वो क्या कहलाएगा? काज़िब कहलाएगा। तो रोया है काजिबा समझ आ गया आपको, साथ का भी समझ आ गया कि जो इत्तला हमें सोते में मिले और हमारा जहन उसको एज इट इज ले ले। मसलन आप ख्वाब में देखते हैं कि आप अपने पीरो मुर्शिद के हमरा है, वो आपको कोई बात समझा रहे हैं। अब ये है तो रोया साहब का, क्योंकि हकीकतन उन्होंने कोई बात इंस्पायर की, आपके जहन ने पकड़ा, आपके शऊर की सतह तक लाया, लेकिन आगे शऊर ने ना समझी का इजहार किया, कहा कि अब्बा कुछ ये कह रहे थे, मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहे थे। ठीक हो गया? ये रोया सादका और काजिबा के बैन बैन हुआ। अब आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप कोई चीज खा रहे हैं और बड़ी गर्मी लग रही है आपको, ठीक है
जी सर जी।
अब आप ख्वाब में ये देख रहे हैं कि आपके अंदर बड़ी हिद्दत है या आपको आग में आग देख रहे हैं और ऐसे लग रहा है आग जल रही है, ठीक है
जी।
अब इसका कई मतलब हो सकते हैं, वो सियाको सबाक के हवाले से उसे एक साइड पे रहने दें। अब अगर मुझसे मतलब कि आप इसे किसी से ताबीर पूछे तो वो बताएगा कि जी आपके अंदर जिस्म में खून में हिद्दत पैदा हो गई है। अब एक सलाह ये आई कि भाई आपके जिस्मानी निजाम में हिद्दत पैदा हो गई है, अब आप ख्वाब में देख रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? है तो वही तला, लेकिन आगे हमारे शऊर ने उसको कितना क्लियर देखा या कितना डिस्टॉर्ट करके देखा। वाजे हो गई बात?
एक्चुअली बात मतलब मैं इसको ऐसे समझना चाहती कि जैसे जैसे आपने समझाया अल्हम्दुलिल्लाह वो तो माइकल बिल्कुल हो गया, मैं जैसे ये कहती सर जैसे कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है वो चीज आपके जहन में चल रही है और फिर जैसे आपका ध्यान उससे हट गया फिर कुछ टाइम के बाद अगर उससे रिलेटेड जो आप खाब देख रहे हो उस वक्त आपके जहन में नहीं है वो पीछे कहीं थी तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा खाब आया आप उससे मुआवजा नहीं कर पा रहे की भाई ये चीज
जी हाँ और ये है कि देखे ना अब आपके लाशौर में तो इत्तलाक मौजूद थी आपने एक शौरी तौर पे उसको कवर अप कर लिया लेकिन अंदर से तो वो खिचड़ी पक रही है।
हाँ जी अच्छा सही
देखे ना वहाँ तो टाइम एंड स्पेस नहीं है ना ये तरतीब तो आप यहाँ रख के बैठे हुए ना आप समझे कि खत्म हो गई है मैं कह रहा हूँ नहीं अभी नहीं खत्म हुई कभी तो उसकी तरफ ध्यान गया
है
अब समझ आ गई
इसको कैसे खत्म करें
जाहिर है उसको आप शौरी तौर पे निगेट कर देना असल में तला भी तो यही दी गई कि भाई वो फालतू की चीजों को दिमाग सोचे जा रहा है उसे हटाओ इसका अच्छा तरीका क्या है फ्री राइटिंग हाँ मतलब ऐसे बैठ के लिखते जाएंगे तो वो जो अंदर लाशौर में चीजें दबी हुई होती है ना वो सरफेस कर जाती है शौर की ग्रिफ में आ जाती है लिखने में यानी जिसे मैं फ्री राइटिंग कहता हूँ एक आधा घंटा बैठ के आप लिखें 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 जो भी आए जेन में लिखते जाएं इससे जेन बहुत फर्ज हो जाता है साफ हो जाता है मुसफा हो जाता है ये जहन का जी जहन का तजिया हो जाता है इस तरह से
ऐसे ही है ऐसे होता है सर इससे बहुत फायदा हुआ था पहले भी तो वाकई में बहुत
फिर बीच में आपने छोड़ के तो दुनिया के धंधों में उलझ गई तो फिर दोबारा कचरा जमा हो गया
दोबारा
अल्लाह हिम्मत दे
थैंक यू सो मच
मोस्ट वेलकम
सर एक सवाल और सर ये जनरल का क्वेश्चन था सर ये जैसे कहते हैं ना मोक्कल मान लो कहते हम भी बचपन से सुनते आ रहा हूँ उनके पास मोक्कल है तो ये जैसे वो पीली मुड़ी जी वाले टाइप की चीजें होती तो सर मैं एक्चुअली मोक्कल को समझना चाह रही थी मोक्कल किसको कहते हैं
इसकी हकीकत बदनाज करूँ मुझे भी नहीं समझ आई कभी
मतलब एकदम समझ नहीं कि ये मॉकटेल का क्या मतलब
जहाँ तक मैं समझा हूँ जहाँ तक मैं समझा हूँ होता ये है कि जो ताकत वो एनर्जी जो कोई काम पूरा करवा दे हम उसको मॉकल कहते हैं ठीक है यानी ये लोगों ने नाम रखा है जो कि इसका कहीं तस्करा मुझे नहीं मिला
ठीक है ऐसे
सिर्फ सुना ही है अर्थ ये है कि ये वो एजेंसी या वो एनर्जी जो कोई काम पूरा करा दे ठीक है अब बाज लोग उसको एग्जैजरेट करके ऐसे शो करते हैं जैसे वो कोई शक्ल सूरत रखती है चीज जैसे वो कोई जिन्नात हैं या कोई भूत हैं या बदरूहे हैं या रूहे हैं और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं असल में सलाहियत है अब आप एक काम सोचते हैं
जी सर
और अल्लाह उसमें आसानियां पैदा कर देता है तो हम क्या कहें कि भाई अल्लाह ने कर्म किया लेकिन दूसरा अंदाज ये है कि हम ये बात यूं कहें कि जी मेरे मोक्कलों ने ये काम कर दिया
ओह अच्छा सही हो गया सर सही हो गया
ठीक हो गया
जी सर बहुत ठीक हो गया थैंक यू सो मच सर मेरे हो गए सर
ये जो हमारे यहाँ जादू टूने का चक्कर चलाते हैं ना
जी जी सर जी
वो दुकानदारी और चूरन बेचना ये उनकी टर्मिनोलॉजी है उनकी इस्तलाहात है
हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही है सर उन्हीं के लिए इस्तलाहात
ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے کہ بھی میرے موکلات کام کر رہے ہیں, انہوں نے تو کہا بھی اللہ نے مدد کی جنگ بدر میں, فرشتوں نے مدد کی جنگ احد میں, فرشتے آ گئے ہیں, تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرے موکلات کام کر رہے ہیں. غور کریں تو گویا غیبی امداد ملنے کو ہم نے اسے موکلوں سے تشبیہ دی ہے.
جی اپنا فائدہ کرنے کے لیے.
جی 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 اور کوئی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال باتیں میرے مراد میں سے پیج بند کے چکے ہے پتا جملہ ہے مخلوق خدا سے اپنے روابط درست اور اتباع رکھنا, پہلے خود کو درست کرے, جب آپ مخلوق خدا کے قابل ہو جائیں گے تو اللہ جی مل ہی جائے. سر یہ تھوڑا سا
صاف تو کہا کہ پہلے خود کو درست کریں, بس یہ کیچ ہے اس میں, دا کی ورڈ از خود کو درست کریں. جب آپ خود کو درست کریں گے, دیکھیں نا جب آپ اماں بننے کے قابل ہوں گے تو اللہ اماں بنا دے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟
صحیح ہو گیا سر. ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی یہ شعور کی اور ذہن کی, سر تو اب یہ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ اب اس کو صحیح اگر درست کرنا چاہیں تو وہ پھر کیسے ہوگا, کیونکہ وہ تو اپنے مطلب برابری کے ساتھ چل رہا ہے نا اب جو بنا ہوا ہے.
آپ کے گھر میں برتن دھلتے ہیں؟
جی سر دھلتے.
کیسے دھوتے ہیں؟
جی سر پانی سے.
دیکھے نا ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اپنی سوچوں کی نگرانی کرنا بس اسی کا نام ہے, کسی کو تزکیہ کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں خیال آیا, آپ نے اسے تولا, آپ نے کہا کہ یہ درست ہے, اپنا لیا. آپ نے کہا نہیں یہ مضر ہے اسے رہنے دو. اس طرح کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, ذہن بن جاتا ہے. بندہ آنے والی اطلاعات کو وہیں پہ دین اینڈ دیر کینسل کر دیتا ہے یا اپنا لیتا ہے, کینسل کرتا ہے یا اپنا لیتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے
سر. اب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں, آپ کا ذہن نہیں بنا ہوا, ایک بندے نے آپ کو بات کی, آپ نے جو بنا ہوا ذہن ہے آپ نے کھٹ کر کے آگے سے ریٹارٹ کیا, ریئیکٹ کیا, لڑائی ہو گئی. یہ اب آپ نے اس ایونٹ پہ تفکر کیا کہ کیا ہوا, کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا, پھر دوبارہ اب آپ نے سوچ لیا کہ نہیں بھائی یہاں پہ ایسی کوئی بات میں نے اگنور کرنی ہے. اب جب وہ دوبارہ ویسی کو اس سے ملتا جلتا کوئی دوبارہ موقع آیا تو آپ نے سابقہ فیصلوں کی روشنی میں کیا کیا, اگلے نے جملہ کہا آپ نے مسکرا کے ٹال دیا. اگر یہ پوز کرنا پڑے کہ سوری میں نے سنا ہی نہیں تو یہ بھی کر دیا. اب دیکھیں کیا ہوا کہ آپ نے مسکرا کے دکھا دیا, اگلے کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ وہ کیسے بدتمیزی کرے یا وہ لڑائی کرے جھگڑا کرے. آپ نے اپنی آپ نے سوبر رہنے کا, اپنے وقار کا خیال رکھتے ہوئے کیا کیا,
صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا.
ہینڈل کیا نا سچویشن کو,
بالکل
ایک باوقار طریقے سے کیا. کیا ہوا کہ آپ خود کو تھپک رہے ہیں, क्या हुआ, वो थपकी का मतलब है कि आपने खुद को दुरुस्त करना शुरू कर दिया।
शुरू कर दिया, सही हो गया सर, ठीक हो गया सर।
थैंक यू
सर। एक सवाल और कर लूं?
इरशाद
सर, ये बातें मेरे मुराद की में से ही है। 294 अल्लाह ने इंसान को एनर्जी दे दी, इस एनर्जी को इस्तेमाल कर प्यार ही दे दिया। अब फैसला आपने करना है कि तवानाई को कैसे और क्यों कर इस्तेमाल करना है, करना ही है या नहीं। सर अब ये जो एनर्जी को किस तरह से हम समझेंगे और कैसे और क्यों कर, तो फिर कहाँ पे?
भाई देखे ना, आपको फैसला करने की ताकत है, कुव्वत है फैसला, इसको एनर्जी नहीं कहेंगे।
सही हो गया, सही हो गया सर।
एक लफ्ज़ है कुव्वत फैसला, फिर कुव्वत अमल, फिर कुव्वत इरादी।
कुव्वत इरादी सही हो गया।
अपने इरादे की ताकत, ये एनर्जी नहीं है। आप फैसला करने की ताकत रखते हैं, ये एनर्जी नहीं है।
बिल्कुल है सर।
हम बहुत महदूद लेते हैं कि मैं हाथ हिला सकता हूँ तो इसका मतलब है मेरे हाथ में एनर्जी है। ये महदूद है। मैं टांग हिला सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, मैं उठ के बैठ गया, तो ये भी एनर्जी ही है।
बिल्कुल बिल्कुल हो गया सर।
लेकिन ये फिजिकल एनर्जी है, फिर इसी तरह जहनी एनर्जीज हैं, फिर इसी तरह रूहानी एनर्जीज हैं।
जी सर, जी सर।
ठीक हो गया ना?
सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर।
तो जितनी भी एनर्जीज हैं उनकी ग्रेडेशन को समझना ही तो तफक्कुर है। आप जितना गौर करेंगे उतनी चीजें आप पे वाज़े होती जाएंगी। इसी का नाम इल्म है। और ये इल्म कहाँ है? वो आपके अपने अंदर है। और सबसे बड़ी एनर्जी इल्म है। इल्म जो है ये तलवार से भी ज्यादा भारी है। देखे ना, इल्म के जोर पे आप एटम बम बना रहे हैं। तो एटम बम से बचने का इल्म जो है वो भी तो ताकत है ना।
बिल्कुल है।
अब आप उसे नहीं इस्तेमाल करते। अब भाई क्या कह, एनर्जी दी हुई है इंसान से है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। तामीरी एनर्जीज भी हैं, तकरीबी भी हैं। एक ही एनर्जी को आप तामीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी एनर्जी को आप तकरीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखे ना, अब एक बंदा चोरी करता है, मुझे बताएं किस कदर टेंशन से गुजरता है वो। अब गौर करेंगे, सारा एनर्जी का इस्तेमाल है ना, उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल। अब ये भिखारी, ये गदागर जो होते हैं, ये सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं। अब ये भी एनर्जी का इस्तेमाल है, लेकिन एक नेगेटिव इस्तेमाल है।
सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर ये जो अभी बात हो रही थी, होया कि अब जो जहन बना हुआ है वो उस हिसाब से खुद ही कर रहा है ना सब कुछ, तो इसको
यू मिस द पॉइंट, यू मिस द पॉइंट। असल खेल इत्तलात का, असल खेल इत्तलात का। आप जितना ज्यादा इत्तलात को वसूल करने की तरफ मुतवज्जो होंगे, उतनी बेहतर इत्तलात मिलेंगी। बस मैंने अर्ज किया ना, यू मिस द पॉइंट। देखे ना, आप इत्तला के दर्जे को छोड़ के नीचे वो जहन की मिस अप्रोप्रिएशन पे असर आए। इसका तरीका तो बता दिया कि आप उसे मिस अप्रोप्रिएट, अब वो है जहन, कोई नहीं तो इग्नोर कर दे, उसको अप्रोप्रिएट करते चले जाए।
ओके सर, सही हो गया। अगर इन चीजों को बिल्कुल आने में वक्त अगर लग रहा है तो
लगने दें, आपका क्या जाता है?
बेहतर हो रही है सर, सब चीजें बहुत बेहतर हो रही है, ठीक
हाँ तो इसमें आप कह रहे हैं ना स्लो इनल इंसाना अजूला है उजलत बाजी तो करनी नहीं। देखो ना एक पौधा जो है उसने छह माह में उगना है, छह माह में उसने फूल आना है, आप छठे दिन के इसमें फूल क्यों नहीं आया?
ओके सर जी।
भाई बच्चा जो है वो दस माह में पैदा होगा, 18 साल में बालिग होगा, आप उसे पैदा होते ही कहेंगे जी मैं इसकी शादी करूंगी तो अजीब बात नहीं होगी?
बिल्कुल होगी सर।
जो प्रोसेस नेचर का है यू हैव टू फॉलो इट। अब देखे ना हजरत मूसा को कहा कि भाई मैंने वादा किया 30 दिन का और 40 दिन में पूरा किया, मतलब क्या हजरत मूसा कहते जी दो दिन में क्यों नहीं कर देते आप, 40 दिन का है का इंतजार किया? यानी अल्लाह का एक निजाम काम कर रहा है, उसके तहत आप ग्रो कर रहे हैं। ये मुकाम शुक्र है कि हम ग्रो कर रहे हैं। ये जो शुक्र का मुकाम है कि हम ग्रो कर रहे हैं, आप उस पे स्टे करें, उसे एंजॉय करें। बाकी ग्रोथ अल्लाह के निजाम के तहत अपने वक्त पे होगी।
ओके सर।
अब देखे ना आप कहने शुरू कर दें कि जी मुझे सिलसिले में 20 साल हो गए, भाई आप अपने को मार्क नहीं चले तो 20 साल तो लगेंगे।
सही हो गया सर।
जिस तरह से मुस्तफा करीम चाहते हैं उस तरह से अभी जहन नहीं बना। हम सारे इसी काविश में लगे हुए हैं कि जैसा वो जहन चाहते हैं वैसा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनकी आशीर्वाद भी हासिल है, वो तसर्रुफ भी करते हैं, वो इंस्पायर भी करते हैं, वो हमें देखे ना इतना मवाद उन्होंने दे दिया कि हम उनकी बातों पे लगे हुए हैं, गौर कर रहे हैं, वो बातें खुल रही हैं, बातें सेटल डाउन हो रही हैं हमारे जहन में, तो अल्लाह का शुक्र है। हो तो रहा है,
हो रहा है, अल्लाह का करम ऐसा हो रहा
है, बस इसी पे खुश रहिए।
जी सर।
मुझे एक दफा याद है मैंने एक दफा हजूर मुर्शिद करीम से अर्ज की, मैंने कहा हजूर का ख्याल ही नहीं आ रहा क्या करूं। अब्बा कहने लगे अंदर कोई स्टोर हो रहा है। गौर करें, उन्होंने तो बड़े ही नफासत से एक जुमला कह के संभाल लिया कि अंदर स्टोरेज हो रहा है, यानी वो प्रोसेस पर लाशोरी तौर पे चल रहा है, क्योंकि आप मतवज्जो हो चुके हैं ना। देखें आप मतवज्जो हो चुके हैं, आप मुराकबे कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, जेन हरकत में है, तो जस्ट लहरा रहा है, जवाब मिल रहे हैं, कहीं अंदर से मिल रहे हैं, कहीं बाहर से मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं ना। तो बस यही ग्रोथ का सफर जारी है, ये होता रहेगा, आखिर एक दिन आप पूरी तरह ब्लूम कर जाएंगे।
इंशाल्लाह सर, जरूर इंशाल्लाह।
जी
थैंक यू सो मच सर, हो गया।
वेलकम।
सलाम।
जी वालेकुम अस्सलाम। माफी चाहते नहीं समझ आया मुझे क्या फरमाया?
बीबी तोहफा बोले के बंदे का सांस खालिश शराब का घूंट है।
ये शराब के घूंट से पहले क्या कहा आपने?
बंदे का सांस।
हाँ हाँ हाँ। अब और करें, शराब क्या करती है? हाँ मतलब एनर्जी देती है, खास किस्म की तवानाई भर देती है जिस्म में, उसको हम नशा कहें, उसको हम सरूर कहें, उसको हम कैफ कहें, ठीक है। अब ये मादी सहारे लेकर अपने अंदर एनर्जी लाना, ये मादी सहारा लेना हुआ ना। अब अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि रूहानियत में ये जहन बना दिया जाता है कि मादी सहारे नहीं लेने और इसी नशे में इसी सरूर में रहना, तो उसका तरीका ये है कि आप अल्लाह के किए को एंजॉय करते करना सीख लें और करना शुरू कर दें और करते ही रहें। तो ये दर्जा आ जाता है कि बंदा सांस लेते हुए ऐसे महसूस करता है कि वो एनर्जी से भर गया, एक खास किस्म की एनर्जी है ना, ऑक्सीजन क्या है,
एनर्जी।
वो एनर्जी जो आपको सांस के जरिए आ रही है, अब आप उसकी तरफ मतवज्जो हैं और आप उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, क्या हुआ कि हर सांस जो है वो आपको ऐसे लगेगा कि मैं शराब पी रही हूँ। अगले शायरों ने एक बात शायराना अंदाज में सूफिया कराम ने इस बात को कहा, उससे आगे शायरों ने नकल किया, ठीक हो गया। अब आप अगर गौर करें कि सांस अंदर लेते हुए आप उसे तवील कर दें, यानी इतना स्लो आहिस्ता आहिस्ता लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, मतलब है 5-7 सेकंड लगा कर सांस को इनहेल करें, तो ध्यान किधर हुआ, अंदर की तरफ। अब अगली बात क्या ध्यान में आएगी कि ये सांस मुझे कौन दिला रहा है, ये सांस इस तरह से लेने की वहम, इस तरह के सांस लेने का तरीका मुझे किसने अता किया, अल्लाह ने। तो आपके जहन में अल्लाह के मोहब्बत, अल्लाह के साथ लगाव और लगावट बढ़ नहीं जाएगी,
बढ़ जाएगी।
अब जब आप सांस लेते हुए इस लगावट को, इस लगाव को, इस मोहब्बत को महसूस भी करेंगे, क्या हुआ, नशा तो हो गया और क्या हुआ, जरूर नहीं आया ये मश्क चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने अर्ज किया दिन में कम से कम 300-500 पूरे लो, फिर देखें इंशाल्लाह ये दर्जा बहुत जल्दी हासिल हो जाएगा। अल्लाह ने कहा जाहिदू फीना, ये जो जान का लगाए रखना है यही सबसे बड़ी कोशिश है, यही सबसे बड़ा जहाद है, यही सबसे बड़ी जिद्दोजहद है। वह जाहिदू फीना यानी कि आपने जिद्दोजहद करनी है कि मैं अल्लाह की बात को समझूं, अल्लाह के जहन में घुस जाऊं। यानी देखे ना, आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आप खुद से आगाह होंगे ना, खुद शनासी से बात शुरू होगी। आप पहले तो अपने आप के अंदर घुसें, अंदर कौन है, अंदर अल्लाह, हाँ या नहीं। बात शुरू हुई हज़रत-ए-सलाम का इरशाद अली मुकाम है, मन अरफा नफ्सहु फकत, ये लफ्ज है ना, फकत सिर्फ वो अरफा रब्बहु, यानी जिसने जान लिया खुद को, सिर्फ वो जान सकता है अपने रब को। तो हम डायरेक्ट अल्लाह पे कुंडा डालने के बजाय पहले जो आपका अपना वजूद है इस पे तफक्कुर शुरू करें ना, अपनी सोचों की निगरानी करें, ये हम वक्त का जवाब है। फिर रफ्ता रफ्ता ध्यान आएगा कि ये मुझे सोचे आ कहाँ से रही है, जाहिर अल्लाह दे रहा है। फिर आपका ध्यान जाएगा कि भाई अल्लाह रब करीम मुझ पे कितना मेहरबान है, मुझे हर तरह की तलाक दे रहा है। जहन जो है वो अल्लाह के साथ रास्ते में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, बस वजाहिदू सीना सुबुलना, अल्लाह कहता है, अल्लाह का वादा है कि तुम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लोगे तो मैं राहें आसान कर दूंगा, फिर बात ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। बस ठीक हो गया
जी सर। सर एक सवाल हो रहा है,
बड़ी मजे की बात है, कुरान में दिमाग का लफ्ज ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मजे की बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट में बनता है तो पहले दिमाग बनता है कि दिल बनता है? नहीं, पहले दिल बनता है, पहले रगों का एक जाल बनता है। कभी आपने अंडा तोड़ा है तो गंदा निकले तो देखा नहीं उसने? पहले रगों का एक जाल होता है, उसके सेंटर में पहले दिल बनता है। अब वो दिल का मुकाम जो है, लोथड़ा जो है, वो तो सिर्फ पंपिंग मशीन है। इसी तरह ये जो दिमाग है ये कोई चीज नहीं है, ये माइंड के जेरे असर, ये ग्रे मैटर है, यानी एक खास किस्म का मादा है जो जमीन से मिलने वाली इत्तलात को प्रोसेस करके बॉडी को चलाता है। तो ना दिमाग है ना दिल है, असल चीज जहन है। कुरान ने लफ फवाद इस्तेमाल किए इसके लिए। ठीक है ना। तो ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा था, बात असल में इतनी सी थी कि असल में हमारा जहन समझता है, इसी को रूहानियत में नस्वा कहा गया है। ठीक है ना, चार चीजें हैं, एक आपकी जात है, एक आपकी रूह है, एक आपका नस्वा है, एक आपका जिस्म है। कहानी ये है कि जात रूह की एनर्जी से काम लेते हुए एक मीडियम बनाती है जिसका नाम है नस्मा, यानी जहन। फिर वो जहन जो है ये जिस्म बनाता है, और जहन ही जिस्म को चलाता है। अब देखें कि हालत ये है कि जहन ने जिस्म को अपना घोड़ा बनाया हुआ है। तमाम अंबिया कराम बशमूल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खातिमुन नबीन, और फिर उनके वारिस औलिया कराम, तमाम की तालीमात का अगर मैं खुलासा एक जुमले में करूं तो वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जहन जो है ये रूह का घोड़ा बन जाए। गौर करें क्या बता गया, कि जब जहन को रूह इस तरह चलाएगी जिस तरह जात चाहती है तो जिस्म ऑटोमेटिकली वैसे ही बिहेव करेगा जैसा रूह चाहती है या जात चाहती है या जैसे अल्लाह चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारा रिश्ता रब्ता कटा हुआ है बीच में से, हम इस तरफ मतवज्जो नहीं है, लिहाजा क्या हो रहा है कि हमारा दिमाग जहन जो है दिमाग को, दिमाग आगे जिस्म को वैसे चला रहा है जैसे इनका दिल कर रहा है। बस ये सारा खाप है कि किसी तरह जहन को हमने रूह का घोड़ा बनाना है, यानी ये रूह के ताबे हो जाए, जहन जो है ये रूह की तहरीकात के मुताबिक चले, अपनी मर्जियां ना करे। बस इतनी है बात का नाम है रूहानियत। हम पता नहीं क्या क्या रूहे जमा कर रहे हैं, रूहे देखना चाहते हैं। वेलकम। और कोई सवाल? چلیں. بہت شکریہ, خوش رہیے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. تھینک یو.